ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், ப்ரெசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
புச்ச பிரதிஷ்டா கே சமான் உஸ்மே சௌ புத்தி பிரதிஷ்டிதே ததபி ஏஷ ஸ்லோக பவதி. யே விஜ்ஞானமே கோ ஸ்பஷ்ட கர்ணி கே லியே கஹ்னே கே லியே आगे मंत्र है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिच विज्ञानम देवाः सर्वे ब्रह्म ज्येष्ठम उपासते विज्ञानम ब्रह्म चेद वेद तस्माचे न प्रमाद्यति शरीरे पापमोनो हित्वा सर्वान् कामान् समस्नुत इति तस्यैष एव शरीर आत्मा यः पूर्वस्य तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्योन्तर आत्मानन्दमय तेनैष पूर्ण स वायस पुरुषविदैव तस्य पुरुषविदतामन्वयम् पुरुषविद तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणपक्ष प्रमोदो उत्तरपक्ष आनन्द आत्मा ब्रह्म पुच्छम् प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। विज्ञानमय कोश है, विज्ञान प्रधान ही यज्ञ करता है बुद्धि प्रधान। जैसे विज्ञान को ही बुद्धि को का यज्ञम तनु थे, बुद्धि प्रधान होने पर ही जीव करता है, तो विज्ञान को यहाँ यज्ञ करता है, यज्ञ करता कर्तृत्व ने कहते। कर्माणि तनुते यज्ञ आदि कर्म करता है श्रद्धापूर्वक, अन्य कर्म भी करता है। विज्ञानम देवा असर्वे ब्रह्म ज्येष्ठ, सारे देवता विज्ञान ब्रह्म है ज्येष्ठ ही उसकी उपासना करते हैं। अन्य जितने देवता है इंद्रादि देवता, प्रथम जय हिरण्यगर्भ ज्येष्ठ है, वो सर्व प्रवृत्ति का कारण उनसे उसकी उपासना करते ध्यान करते, वही ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म अभिमान करके अहम अस्मि करके चिंतन करके उपासना करते हैं तब ऐश्वर्य को प्राप्त करते है। यदि विज्ञान ब्रह्म चेद वेद, विज्ञान ब्रह्म ऐसा यदि उपासना करता है, उपासना करता है मैं हूं, किन्तु उपासना केवल नहीं, केवल थोड़ा उपासना कर दिया छोड़ दिया ऐसा नहीं, तस्माचे न प्रमाद्यति। विज्ञान ब्रह्म उपासना करता है तस्माचे न प्रमाद्यति, अर्थात प्रमाद नहीं करता। जिसकी उपासना करता है उपास्य हुए, उपासना किसकी करता है, उपासना करते समय ध्यान करते समय प्रमाद क्या हो जाता है, बैठे भगवान का ध्यान करने के लिए मन भागे भागता इधर उधर, जिनके पास पहुंचे मूर्ति रखे मंदिर रखे फटो रखे कहीं बैठा भगवान का ध्यान करने के लिए, और उनको पास में रख करके उनका चिंतन ध्यान करते समय मन कहीं चला गया, ये प्रमाद है। ये उपासना करते समय ये प्रमाद नहीं होना चाहिए, इसे ब्राह्मण से न प्रमाद देती। प्रमाद है कि बाह्य विषय में आसक्त तो हो जाना पर प्रमाद है। जैसा जहां प्रारंभ क्या भगवान का ध्यान करना, परमात्मा की पूजा करना, स्तोत्र पाठ करते ध्यान करते जप करते पूजा करते, उस समय मन इधर उधर चला गया, प्रमाद नहीं है। प्रमाद नहीं तस्मा से न प्रमाद देती, अर्थात उपासना इसे करे तैल धारावत निरंतर उसका चिंतन करे, तस्मा से न प्रमाद देती। इसलिए दो बार कहते हैं उपासना करे, ऐसे उपासना करे प्रमाद को छोड़ करके तत्पर होकर के, तो शरीर पापमन हित्वा सर्वान कामान समस्नुते, शरीर में सारे पाप को छोड़ करके काम्य वस्तु को सब प्राप्त कर लेता है। ये शरीर में अभिमान होकर के पाप होता है, देहाभिमान पूर्वक ही पाप होता है, और विज्ञान में आत्मा में जो अभिमान हो जाता है, देह में आत्मा अभिमान नहीं होता है, देह में आत्मा अभिमान होने से पाप होता है, पाप का निमित्त हो गया आत्मा अभिमान देह में, वो निमित्त नष्ट होने से पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस निमित्त से पाप होता है वो निमित्त नष्ट होता है देह आत्माभिमान, देहात्माभिमान कैसे नष्ट होगा, विज्ञान आत्माभिमान होने से, बुद्धि आत्मा में अभिमान होने से देहात्माभिमान नष्ट हुआ, तो देहात्माभिमान के कारण जो पाप उसका नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। छत्र पकड़े तो छत्र की छाया है, और छत्र निमित्त छोड़ दिया तो छाया नहीं रही। इसी प्रकार देह में अहम बुद्धि के कारण जो पाप होता है, देह में अहम भाव नष्ट हो गया तो निमित्त अपाय नैमित्त कश्यापि अपाय, निमित्त के बिना उस पाप भी नष्ट हो जाता है। विज्ञान बुद्धि में अभिमान, बुद्धि में अभिमान का अर्थ स्थूल शरीर अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, तीनों कोश में आत्मबुद्धि छोड़ करके विज्ञान बुद्धि, विज्ञान में आत्माभिमान, विज्ञान बुद्धि में आत्माभिमान का अर्थ देह अन्नमय कोश में नहीं हूं, प्राण भी मैं नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, ऐसा करके आत्माभिमान हो जाए तो पाप की निवृत्ति होती है। जो देह में अभिमान प्रोत पाप निमित्त नष्ट होने से पाप नष्ट हो जाता है, छोड़ करके फिर विज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लेता है, पाप महिता सर्वान कामान समस्ते सारे काम्य को प्राप्त कर लेता है। तस्य एषैव शारीर आत्मा यह पूर्वस्य, उसका आत्मा है शरीर में होने वाला शारीर आत्मा, जो मन में कथा वही है, कोई अलग नहीं, जो पहले अन्न में एक आत्मा था वही प्राण में एक आत्मा, जो प्राण में कोश का आत्मा था वही मन में एक, जो मन में एक आत्मा था वही विज्ञान में एक आत्मा है, अलग अलग नहीं। यह पूर्वस्य ये विज्ञान में एक आत्मा हुई है जो पूर्व का था, तस्माद ये तस्माद विज्ञान में याद, अभी विज्ञान में से बुद्धि में अहम अभिमान हुआ, देहादि अहम अभिमान छोड़ दिया, किन्तु वास्तुतः बुद्धि में चेतन का प्रतिबिंब होता है चिदाभास, प्रतिबिंब होने से जब हम बुद्धि को देखते हैं चिदाभास विशिष्ट ही बुद्धि दिखती है, कभी चिदाभास के बिना नहीं दिखती है, और चिदाभास चेतन जहां देखते हैं वहां बुद्धि में ही चिदाभास है, बुद्धि में चिदाभास होने से चेतन जैसे हुआ उसके संबंध से इंद्रिय शरीर में भी चैतन्य है, जिसको देखकर कहते जिंदा है जीवित है, चिदाभास अंतकरण में है चेतन हुआ उसके संबंध से कुछ देह में भी कुछ प्रभाव होता है तो जीवित है, जब अंतकरण चला गया सूक्ष्म शरीर चला गया चिदाभास नहीं रहा, वही शरीर कितने सुंदर शरीर कितने सख्त है वो सूक्ष्म शरीर चला गया तो गया एकदम नीचे गिर पड़ा, थोड़े समय दुर्गंध सड़ने लगे जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा, जितने अच्छा हो शरीर जितने कुछ हो थोड़े एक घंटा दो घंटा थोड़े समय होने पर दुर्गंध होगा, जल्दी उसको फेंको जलाओ, तो यो शरीर में रहता है चिदाभास, चिदाभास के कारण ही हम जीव जड़ का भेद करते हैं, जहां अंतकरण चिदाभास है उसको कहते चेतन, चेतन सर्वव्यापक होने पर भी पत्थर दीवाल को जड़ कहते हैं, वहां चिदाभास नहीं, चेतन का प्रतिबिंब को चिदाभास कहते, चिदाभास शब्द का अर्थ चिदवद आभास, चेतन जैसे लगता है, जैसे दर्पण में मुख देखते हैं तो मुख जैसे लगता है, मुख नहीं दर्पण में उसको कहते मुखाभास, मुख जैसे दिखे तो लगता है, इसी प्रकार चेतन जैसे लगता है चिदाभास, जिसके संबंध से हम उसको चेतन कहते हैं, और शुद्ध चेतन सर्वव्यापक है, वो चिदाभास है बुद्धि में है, बुद्धि में हमेशा बुद्धि देखते तो चिदाभास के साथ, ऐसे बुद्धि में ही चेतन में चेतन ही सा भ्रम होता है, जितने विज्ञानवादी है बौद्ध मत एक विज्ञान को आत्मा मानते, अलग कोई आत्मा नहीं, सामान्य में इसे निश्चय कर मैं निश्चय करने वाला मैं निश्चय करता हूं, बुद्धि में निश्चय होता है, बुद्धि अलग मैं अलग ये समझना चाहिए, आपकी बुद्धि है आप बुद्धि नहीं है, किन्तु जब बुद्धि को देखते हैं तब चिदाभास विशिष्ट देखने से लगता है मैं वही हूं, उससे अलग क्या है, यही अलग समझना है, बुद्धि में चिदाभास है, बिंब रूप कोई चेतन है तो बुद्धि में चिदाभास, दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है तो बिंब है, गाड़ी में चलाते यहां दर्पण में कुछ दिखता है तो पीछे कोई गाड़ी आती है, उसे ड्राइवर जान लेता है पीछे कोई गाड़ी आती है, यहां दर्पण के अंदर उधर दिखाया तो कोई आया, ऐसे दर्पण सामने है कोई पीछे आएगा तो पता चल जाता है, प्रतिबिंब से बिंब का निश्चय होता है, तो चिदाभास है तो बिंब रूप चेतन है, तो बुद्धि स्वयं आत्मा नहीं है, बुद्धि के अंदर अलग है आत्मा, ये समझना, ये भी एक एक को अलग अलग विचार करके, मेरी बुद्धि है मैं बुद्धि नहीं हूं, बुद्धि मेरी तो मैं बुद्धि नहीं हूं, तो उसे अंतर अन्य अंतरात्मा है, अन्य अंतरात्मा, और ये तेन ऐसा पूर्ण तेन आनंदमय न ऐसा विज्ञानमय आत्मा पूर्ण, विज्ञानमय आत्मा आनंदमय से पूर्ण हुआ, सब आयस पुरुष विधेय आनंदमय भी पुरुष आकार है, आनंदमय भी सब वस्तुतः स्वतः पुरुषाकार नहीं, विज्ञानमय पुरुषाकार होने के कारण उसके अंदर होने से ये भी पुरुष विधता, तस्य तस्य विज्ञानमय से पुरुष विधता मनु, विज्ञानमय पुरुष विध पुरुषाकार होने से उसके पीछे आनंदमय अयम का आनंदमय पुरुषविद आनंदमय पुरुषाकार हुआ। आनंदमय कोश पुरुषाकार ही, आनंदमय कोश को पुरुष कहा, पुरुषाकार हुआ, तो पुरुषाकार है तो उसका सिरादि क्या है? तस्य प्रियमेव शिरः, प्रिय है, प्रिय मोद प्रमोद, इष्ट वस्तु के दर्शन से के वृत्ति होती है, उसका नाम प्रिय है। अभी इष्ट को हम प्रिय कहते हैं, अंतकरण की वृत्ति होती है, प्रिय हो गया शिर प्रधान। उसके बाद इष्ट वस्तु दर्शन से वृत्ति है, प्रिय कहते हैं, इष्ट वस्तु की प्राप्ति से मोद है, और प्रमोद प्रकृष्ट मोद प्रमोद इष्ट वस्तु के भोग से होता है, ये प्रिय मोद प्रमोद ये हो गया उत्तर पक्ष हो गया प्रमोद। और आनंद आत्मा, आनंद स्वरूप है उसका शरीर, आत्मा हो गया आनंद। यहां जो आनंद आत्मा कहा गया है ये मुख्य आनंद नहीं है, क्योंकि जो आनंद है वास्तव निरवयव है, यह इसका अवयव है, इस अवयव है आनंदमय। इसके ऊपर ब्रह्मसूत्र आया, आनंदमय अभ्यासा, आनंदमय ब्रह्म है, इसे वृत्तिकार मत के अनुसार विचार हुआ। अंत में आनंदमय कोश आत्मा नहीं, किंतु उसका जो पुच्छ प्रतिष्ठा है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय कोश की जो प्रतिष्ठा है उसको कहा गया ब्रह्म पुच्छम। ब्रह्म जो पुच्छ कहा, पुच्छ लाक्षणिक है, शुद्ध ब्रह्म किसका पुच्छ नहीं किंतु प्रतिष्ठा है, पुच्छ आगे पहले प्रतिष्ठा को पुच्छ पुच्छ शब्द से कहा गया था, यहां भी पुच्छ जैसे कह दिया, किंतु ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म उसकी प्रतिष्ठा है। आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा, आनंदमय कोश का अधिष्ठान है वही ब्रह्म है, मुख्य ब्रह्म है जो प्रतिष्ठा शब्द से, आनंदमय कोश की प्रतिष्ठा है ब्रह्म। यहां पुच्छ शब्द पुच्छ अर्थ नहीं, पहले पुच्छ शब्द प्रयोग किया गया था, यहां भी पुच्छ शब्द से उसको कह दिया, ये प्रतिष्ठा है शुद्ध ब्रह्म। पांच कोश समझने के बाद पंचम कोश आनंदमय कोश, आनंदमय कोश है कारण शरीर, तीन कोश सूक्ष्म शरीर में आए, प्राणमय मनमय विज्ञानमय, आगे कारण शरीर, कारण शरीर है अविद्या अनादि अनिर्वाच्य अविद्या, उस अविद्या में उसको आनंद ऐसे कहा गया, जब जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था सुख भोग करता है, जागृत अवस्था में ही प्रिय मोद प्रमोद अंतकरण की वृत्ति होती है, अंतकरण की वृत्ति होने पर नष्ट हो जाता है, उसका संस्कार रहता है अंतकरण में, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान में अंतकरण लीन हो जाता है, अंतकरण जीर्ण हो जाएगा, अंतकरण के संस्कार भी उसके साथ अज्ञान में रहते हैं, जैसे जल में पानी घड़ा में था लेकर के जल में डाल देंगे, जो घड़ा में पानी था उसी घड़ा में यदि कुछ नमक मिला हुआ अथवा मीठा मिला हुआ कुछ रंग मिला हुआ और पानी में जाकर मिल गया, तो इसलिए ये संस्कार से युक्त अंतकरण अज्ञान को तत्संस्कार वाला कर देगा। सुषुप्ति अवस्था में अंतकरण अज्ञान में लीन होता है, किंतु बताया था यदि पूरा पूरा अंतकरण जाकर अज्ञान के साथ एक हो जाए तो फिर सुषुप्ति के बाद और जगेगा नहीं, और जगेगा तो वो नहीं जगेगा। सुषुप्ति अवस्था के पहले जो व्यक्ति मनुष्य सोया था उसका अंतकरण पूरा अज्ञान में लीन हो गया, आते समय पानी घड़ा एक घड़ा पानी लेकर जाओ समुद्र में डाल दो फिर उठा कर ले आओ, जो पानी आपने लेकर गया था वो पानी आएगा, वो मिल गया, थोड़ा बिंदु आस होता है दूसरे आ जाएगा, तो कोई सोया सुषुप्ति में जगते समय व्याघ्र होकर जगेगा या कोई पशु बनकर जग जाएगा दूसरा गोवंश होकर के, किंतु जगने वाला वही जगता है जो सोया था, और जितने उसका संस्कार था उसका स्मरण होता है, पर यदि क्रोध था झगड़ा करके सोया उठते ही याद करता है हाँ उसका आज देखूंगा, और जो भगवान का जो ध्यान करता है उठ करके तुरंत ध्यान करता है, श्लोक कंठस्थ किया था उठ करके उसका फिर कंठस्थ करता है, जो था उसका संस्कार उस संस्कार ठीक ऐसे ही रहता है, जैसे वृत्ति पहले थी उठते ही वही वृत्ति होती, कोश कंठस्थ किया था श्लोक बाकी है उठ करके फिर आवृत्ति करता है, कभी विस्मरण नहीं होता है, संशय नहीं होता मैं कौन कहां से आया, तो कारण क्या हुआ जो अंतकरण उसमें डूब गया वही अंतकरण आता है, अर्थात अंतकरण अज्ञान में तो डूब गया किंतु अंतकण सबका अंतकण इसे घड़ा बंद घड़ा में समुद्र डूब गया। डूब गया तो सो एक हो गया, अलग अलग नहीं रहा। अंधकार में सारे पदार्थ रहते हैं, रात में बहुत गाढ़ अंधकार हो गया तो अंधकार अंधकार ही दिखता है। क्या कहते अंधकार में सो एक ही भूत, और अंधकार का प्रकाश जो जलाएंगे अलग अलग घड़ा निकले दिखेंगे या सब एक हो जाएंगे? अंधकार के कारण दिखते नहीं थे, कहते एक ही भूत हो गया, किन सब घड़ा अलग अलग है, प्रकाश हुआ तो सो। इसी प्रकार सुश्रुति के बाद जब जगते हैं, प्रलय के बाद सृष्टि होती है, तो अपने भांड लेकर के आते हैं, अपने कर्म पुण्य पाप कर्म वासना लेकर के आते हैं। जितने पुण्य पाप कर्म साथ में रहता है अंतकर्ण में, और संस्कार भी रहता है, वही आता है। इसलिए सुश्रुति अवस्था के बाद आने के बाद भी वही संस्कार रहता है। फिर भी सुश्रुति अवस्था में कहते हैं कुछ में अनुभव नहीं किया था, ये जगने के बाद कहता है न किंचित अवेदिशम सुखम अहम असापसम सुख से सो गया। ये सुश्रुति अवस्था में जो अज्ञान वृत्ति हुई थी उसका संस्कार को लेकर के अंतकण आता है। अंतकण जो डूब गया उसके साथ मिला, मिलने पर ही अपने कर्म वासना छोड़ता नहीं। ये कर्म वासना ऐसा है और छोड़ना बड़ा मुश्किल है। जो पाप पुण्य कर्म किया है उसको कोई छोड़ नहीं सकता है, चोर भी नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। पाप तो कोई लेना नहीं चाहेगा, पुण्य कर्म भी कौन ले नहीं सकता है। सुश्रुति वहां लेना हुआ अपने को पता नहीं, रक्षा करने की कोई है सामर्थ्य नहीं, किंतु पूरा पूरा रहेगा। आप आते समय आपके पुण्य साथ आएगा, आता ही है, किंतु वहां से जब आता है वहां का कुछ, जैसे बताया था गंगा जल में शाम को दूध डुबा के रख देते हैं, सुबह से दूध को लेकर बिक्री करते हैं, शाम को कहां से दूध आया, वहां फ्रिज का क्या, गंगा जल बहुत ठंडा है, बड़े बड़े कैन में दूध लेकर वहां डुबा करके रख देंगे, ऊपर तोड़ाए थे यहां तक डुबा दिया, सुबह लेके तो ठंडा है। जिस प्रकार वो ठंडा आ जाता है, ठंडापन आ जाता है ना, नहीं, इसी प्रकार अंतकरण उसमें डूबा वहां का कुछ संस्कार को लेकर आ जाता है, आकर कहता है सुख से सो गया। जीव कहेगा प्रमाता, अंतकरण विशिष्ट चेतन कहता है, तो आकर के कहता सुख से सो गया, कुछ पता नहीं चला, तो अज्ञान में लीन हो गया। आनंदमय कोष हुआ प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति वाला, वृत्ति सुश्रुति काल में नहीं है, वृत्ति जागृत काल में है, स्वप्न अवस्था में वो वृत्ति का संस्कार रहा। संस्कार वाले जो कोष आनंद प्रदान करके उसको कहते आनंदमय, आनंदमय कोष हुआ आनंद प्रधान, और आनंद ब्रह्म के समीप होने से भी आनंदमय कहा, आनंद रूप नहीं आनंदमय, आनंद प्रचुर। इसी गांव में बहुत ब्राह्मण रहते हैं, बहुत ब्राह्मण रहते हैं, मतलब ब्राह्मण से भिन्न कोई है या नहीं है? नहीं तो बहुत ब्राह्मण का तो अल्प अन्य ब्राह्मण है। आनंदमय तो प्रचुर आनंद है, प्रचुर आनंद है तो कुछ दुख भी है, आनंदम आनंद एवं नहीं है आनंदमय, इसलिए आनंदमय को सब ब्रह्म नहीं, कहीं कहीं आनंदमय को ब्रह्म भी मान लेते हैं, वही ब्रह्म है ये नहीं। शास्त्र में आया विचार ब्रह्म सूत्र में, उसका जो प्रतिष्ठा पुच्छ प्रतिष्ठा वो मुख्य ब्रह्म वही है। तो ये मोद प्रमोद आदि हुआ आनंदमय कोश, आनंदमय कोश है कारण शरीर, वो बीज अवस्था है, आगे एक अंकुर फल होता है जागृत स्वप्न में, सुश्रुति अवस्था में बीज रूप रहता है, अज्ञान रहता है, और जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक अज्ञान रहता है, और अहम ब्रह्म ज्ञान होने पर अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो आनंदमय कोश में उसका जो अधिष्ठान ब्रह्म है, पुच्छ समान का प्रतिष्ठा वही ब्रह्म है, उसको जानना है। तदेतस्मिन् तदप्येष श्लोक भवति, उसके अर्थ को कहने वाले आगे श्लोक है। वो आनंद ब्रह्म का अधिष्ठान ब्रह्म है, वो सदरूप है, उसको जानना है। इसके ऊपर कोई कोई कहते सुश्रुति में गाढ़ निद्रा में सो गया और कहां रहा ब्रह्म, कहां रहा, अज्ञान जड़ हो गया, तो अलग कुछ है ही नहीं, सब सब का अभाव हो गया, सब असत हो गया। श्रुति में भी कहें कहा गया असत विदम अग्रासी थी, सृष्टि के पहले असत था, ततः खलु इदम अजायत, असत स जायत, सरस्वती अवस्था में किसी का कोई नहीं रहा, सत्ता नहीं रही, असत हो गया, फिर उससे उत्पन्न होता है। तो यहाँ भ्रम होता है, जो पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं वो है, पृथ्वी जल तेज हमको अनुभव में आता है, घटपट है, सत्य अस्ति अस्ति कहते हैं, और ब्रह्म का भी ऐसे उपलब्धि का विषय नहीं होने से वो ब्रह्म भी कोई ही पदार्थ नहीं, असत है। इसे शून्यवादी, बौद्धों की शून्यवादी कहते असत तुच्छ है, ब्रह्म को ही नहीं। अब बहुत लोग कहते हैं ऐसे ब्रह्म, कुछ लोग आजकल सामान्य विचार शास्त्र में नहीं है, चार्वाक मत है, जो प्रत्यक्ष दिखता हुई है और अन्य अनुमान शब्द आदि प्रमाण नहीं मानेंगे। और आगे थोड़ा जा करके मनो में विज्ञान में तो पहुंचते अंत में कोई कहते सबका शून्य अभाव हो गया, वही है सब कुछ, और ब्रह्म कोई नहीं, वो कहां दिखता है, कुछ नहीं है तो शून्य कहते हैं। तो शून्य जो मत है उसका निराकरण यहां श्रुति करती है, यहां श्रुति स्पष्ट कर कहती है असन एव सभवती असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्थि ब्रह्मेति चेत वेद संतमेनं ततो विदुरिति तस्येष एव शारीर आत्मा यः पूर्वस्य अथा त्वनुप्रश्नाः उत विद्वानामं लोकं प्रेत्य कश्चन गच्छति। आहो विद्वानामं लोकं प्रेत्य कश्चित् समश्नुताहु शोकामयत बहुश्यां प्रजायेति शतपोतप्यत शतपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृजत यदिदं किञ्च तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत् निरुक्तञ्चानिरुक्तञ्च निलयञ्चानिलयनञ्च विज्ञानञ्चाविज्ञानञ्च सत्यञ्चानृतञ्च सत्यमभवत् यदिदं किञ्च तत्सत्यमिति आचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। इसका व्याख्यान करेंगे थोड़े 10 मिनट अभी। ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा का आ गया, सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान है, वो अज्ञान में और कुछ नहीं है, सारे सब अज्ञान मिलीन हो गए, एक ही अज्ञान अंधकारमय अज्ञान है, वो अधिष्ठान अज्ञान सुषुप्ति को जानने वाले आप है। आप आकर कहते गाढ़ निद्रा में सो गया, तो तीनों अवस्था को जानने वाला जागृत स्वप्न सुश्रुति से विलक्षण शुद्ध चेतन वो कोई अलग नहीं, आप ही जागृत अवस्था को जानते, स्वप्न अवस्था को जानते, सुश्रुति को भी जानते हैं, तीनों अवस्था का साक्षी, तीनों अवस्था से विलक्षण और शुद्ध है। उसे आत्मा आपके स्वरूप में ना तो जागृत प्रपंच का कुछ है, न स्वप्न का, न सुश्रुति का। सुश्रुति में तो जागृत प्रपंच लीन हो जाएगा, किंतु सुश्रुति अवस्था का जो साक्षी है, चेतन शुद्ध असंग है, उसके साथ किसी भी अवस्था का संबंध नहीं, वही शुद्ध स्वरूप ब्रह्म सब की प्रतिष्ठा अधिष्ठान सत्य एक है तत्व, वही मैं हूं, चिंतन करना है। अहमस्मि परम ब्रह्म नित्यं शुद्धमविक्रियम् चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।